यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
सब लोग बोलिए हरि बोल। ये ऐसी सुंदर जगह है कि अगर आप पुकारेंगे तो आवाज आपकी गूंजेगी, इसलिए संकोच मत करना।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
पुकारो सब लोग पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। बहुत ही नाजुक ध्वनि निकल रही है। सब लोग मन को एकाग्र करके अभी पुकारिए
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
श्याम श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री श्री राधा मान बिहारी लाल की। श्री श्री ब्रह्माचल धाम की। श्री बरसाना धाम की, श्री गहवरकुंड धाम की, श्री मोरकुटी धाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सबका आज के इस सुंदर संध्या में 8 फरवरी के इस सुंदर संधि काल में आपका स्वागत है। अगर हम शहर में करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे तो इस वातावरण को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा सुंदर वातावरण यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की अनन्य कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले विनती यह है कि अपने सारे इंद्रियों को केंद्रित करना, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑल योर सेंसेस टू एब्सॉर्ब दिस मोस्ट वंडरफुल सिचुएशन। इस सुंदर दिव्य वातावरण को ग्रहण करने के लिए अपने इंद्रियों को इसमें ही रखना और कहीं उसको उनको विक्षेपित होने मत देना। ये गहबर कुंड है, ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत बने हैं तो 4 शिखर हैं, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और भानुगढ़। और वो 4 शीश जो हैं उनके, ब्रह्मा जी के, वो 4 शिखरों के रूप में आविराजमान हैं। और गहबर कुंड जहाँ पर आप बैठे हैं, ये जो कुंड है, ये ब्रह्मा जी की नाभि है, नाभिस्थान है। इसके इर्द गिर्द इतने सुंदर वृक्ष हैं, आप देखिए, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, तमाल के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, ये सब कल्प वृक्ष हैं। इनसे आपको जाने के पहले गले लगाकर आशीर्वाद देना चाहिए, कृपा याचना करनी चाहिए। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार सभी ऋषिगण ये तमन्ना करते हैं कि उन्हें यहाँ पर लता पताओं का रूप प्राप्त हो। और 3 इसके अर्थ होते हैं, ये तो एक तो वो भगवान के धाम के कल्प वृक्ष हैं जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। दूसरे, ये सभी संतगण, ऋषिगण तपस्या करके यहाँ पर वृक्ष बनकर रहते हैं, भजन करते हैं। और तीसरा अर्थ इसका यह है कि स्वयं राधा रानी यहाँ पर लता पता में निवास करती हैं, इसलिए किसी भी रूप में यहाँ पर वृक्षों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। और वृक्षों का सहारा लेकर हम अनन्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी, जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, आपके पीछे जो पेड़ है वो कदम तमाल का पेड़ है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है। गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण यहाँ से अंतर्धान हो गए तो उनके विरह में इस वृक्ष को गले लगाते थे, क्योंकि उसका रंग जो है वो श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। कदम का पेड़ राधा रानी का स्वरूप है। और एक विशेष बात हमारे लिए भावनिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 1971 में इसी जगह पर आए थे। घनश्याम दास बाबा के निर्देश से वृंदावन वास यमुना किनारे काफ़ी दिन तक उन्होंने किया, और घनश्याम दास बाबा के इच्छा के अनुसार वो यहाँ पर पैदल आए। और पैदल जब चलकर इस जगह तक आए तो वो रास्ते में उनको बहुत दिव्य अनुभूतियाँ हुई, साक्षात्कार हुए। और इसी गहबर कुंड के आसपास यहाँ पर पहले एक छोटी सी कुटी हुआ करती थी, एक बहुत बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पर, उधर एक छोटी सी कुटी हुआ करती थी और उसमें एक पेड़ भी था कुटी के अंदर। तो वो कुटी के बाहर आकर परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज रोज शाम का सत्संग यहीं पर किया करते थे और ऊपर मान मंदिर में निवास करते थे। एक थे प्रकाश सिंह, एक थे सखी शरण बाबा, एक थे राधानाथ स्वामी, अभी उस समय रिचर्ड स्लाविन थे, और एक रमेश बाबा जी महाराज, ये चार लोग उस पहाड़ पर निवास करते थे। और राधानाथ जी महाराज दो बाल्टियां लेकर वहाँ से उतरकर यहाँ से पानी लेकर फिर ऊपर जाते थे और मानपुर में जाकर भिक्षा करके ऊपर लेके जाते थे। फिर बाबा जी महाराज उसको चार लोगों में डिवाइड करते थे और पाते थे। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर लीलाएं उनकी। लेकिन सारांश में कहा जाए तो अपने सत्य की खोज की जो यात्रा थी उनकी, द सर्च ऑफ ट्रुथ एंड द सर्च ऑफ सुप्रीम गॉड, वो उनको यहाँ पर उसका अंजाम प्राप्त हुआ। जैसे कि जो दिशा प्राप्त हुई, अनुभूति प्राप्त हुई, एक तरह से उनकी खोज यहाँ समाप्त हुई और पता चला कि किस दिशा में चलना है। तो परम पूज्य रमेश बाबा जी का सान्निध्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनके सान्निध्य में उन्होंने बहुत सारी ऐसे गहरी रहस्यमय भक्ति की बातें समझी। एक विरक्त जीवन और एक साधु का जीवन कैसा होता है उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, उसको अमल भी किया, अपनाया भी उसको। और यहाँ पर हम सब भक्त लोगों ने मिलकर कई साल तक, अभी आज उसको 33 साल हो गए। सबसे पहले हम 86 में यहाँ पर आए थे, तो 33 साल से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कभी साल में 6 बार भी आए हैं, कभी साल में 8 बार भी आए हैं, कभी कभी एक बार भी आते थे। तो हमारे लिए भी गुरु महाराज की कृपा से बहुत सारे दिव्य और भावना प्रधान, हृदय स्पर्शी ऐसे काफ़ी अनुभव यहाँ पर हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पर उस समय कीर्तन होता था और ये जो जगह है ना, यहाँ पर प्लेटफॉर्म, वहाँ पर नृत्य करते थे सब भक्त लोग। इसके ऊपर देखेंगे आप, सबको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर बिल्डिंग है सबके ऊपर, इधर राइट साइड में है ना, मेरी उंगली जहाँ दिखा रहे हैं, हाँ वो मोर कुटी है। यहाँ पर मान मंदिर है, वहाँ पर मोर कुटी है। तो छोटी छोटी, अभी समय बहुत कम है, लेकिन संक्षेप में हम बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर राधा रानी अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ रोज स्नान करती है इस कुंड में। और ये कुंड जो है वो देवताओं को, गंधर्वों को भी आनंद देने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है, प्रेम और भक्ति प्रदान करने वाला है, राधा और कृष्ण को आनंद देने वाला कुंड है। गहवर कुंड कह सकते हैं, राधा सरोवर कह सकते हैं। और जब वो 64 सखियां यहाँ पर स्नान करती है तो ग्वाल बाल मोर कुटी से लड्डू फेंकते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं। ऊपर मान मंदिर है और राधा रानी यहाँ पर रोट कर बैठ जाती है। और ये सारा जो इलाका है जिसमें आप बैठे हैं उसको गहवर वन कहते हैं, गहवर वन। ये गहवर वन जो है वो पूरे बरसाने की आत्मा है। बरसाना जो है वो चार चीज़ों के लिए मशहूर है, चार प्रधान चीज़ें हैं। एक है खोर यानी जलाशय, खोर यानी रास्ता, सांकरी कोर एक विशेष चीज़ है यहाँ की। एक है खिरक, खिरक यानी जलाशय, पौंड, वाटर पौंड। और गिरी यानी चार शिखर, पर्वत शिखर। और लास्ट है गहवर, जो गहवर बन बहुत विशेष है। राधा रानी का जो मंदिर है ना भानुगढ़, जहाँ पर मंगल आरती करते हैं हम, वहाँ से लेकर पूरा इस एरिया को कवर करते हुए इसके आगे भी चिक्सोली गांव, अभी हम चिक्सोली गांव में बैठे हैं, चिकित्सापुर कहते हैं उसको, या तो चिक्सोली कहते हैं, चित्रा सखी का गांव है, चित्रलेखा देवी। और भानुगढ़ से लेकर ये पूरा इलाका जहाँ पर हम चल के आते हैं वो पूरा कवर करके उसके आगे चिक्सोली गांव समाप्त होता है और डबारा गांव शुरू होता है, वहाँ तक ये गहवर वन फैला हुआ है। और इसका महात्म्य यह है कि ये गहवर वन राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। यहाँ के सारे पेड़ और पौधे जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, बेलियां, क्रीपर्स, ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, बिग ट्रीज, वो सब यहाँ पर राधा रानी ने अपने हाथ से लगाए हैं और अपने हाथ से उसको जल दिया है, उसको सिंचन किया है। तो इस तरह से ये स्थान बड़ा अद्भुत है, ये बरसाने का हृदय है। और जैसे कि नाम है गहिवर, गहिवर का मतलब होता है कि इंग्लिश में ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ओवरवेलमिंग इमोशन, भाव विभोरता। मराठी में तो समझते हैं हम लोग गहिवर का मतलब क्या है, जब दिल भर के आता है ना ऐसे भावनाओं से, तो उसको गहिवर कहते हैं। तो ये पूरा वन जो है वो ऐसे ही इंटेंस भावनाओं का एक इलाका है। सारी लीलाएं यहाँ पर इस तरह से होती है। और गहिवर की विशेषता यह है कि गहिवर में सभी जो व्यवस्था है वो कमानों में है, ऑल द अरेंजमेंट्स आर इन आर्चेस। अभी आप तो अंधेरा हो गया, जहाँ पर आप आगे जाएंगे उधर गहिवर वन सुरक्षित किया गया है, आगे जाकर उसमें भी सब ऐसे ही आर्चेस बने हुए हैं, कमान कहते हैं उसको। और उस पर सब बेलियाँ बहती रहती हैं, द क्रीपर्स आर फ्लोइंग ओवर द आर्चेस। और लीला यहाँ की ऐसी है कि उन कमानों के अंदर और अंदर और अंदर आप जाएंगे तो सब कमाने के ऊपर वो बेलियाँ ऐसे बहती रहती है, फ्लोइंग क्रीपर्स, फ्लोइंग वाइन्स। उस पर सुंदर सुंदर सुगंधी रंग बिरंगी फूलों की बेलियाँ ऐसे बहती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं। उसके अंदर निकुंज है, निकुंज का अर्थ यह है कि जो इतना सघन यानी इतना डेंस है, क्या कहते हैं उसको, थिक फॉरेस्ट जैसा है, उसमें आप कहीं से प्रवेश नहीं कर सकते हैं सिवाय एक 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 दरवाजे से, एंट्रेंस एक ही होता है उसमें, और सब जगह से बंद होता है, सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, या गाय या ग्वाल बाल या ऐसे कोई, केवल जो जिनके पास वो बैंड लगा हुआ है आईडी उन्हीं को प्रवेश मिलता है, तो उसके योग्य है, केवल गोपियों के लिए प्रवेश है। कभी कभी गोपियों के लिए प्रवेश नहीं होता है। एक कहते हैं कुंज, कुंज कहते हैं जिसको, वो खुला होता है, चारों तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। एक होता है निकुंज जो सब तरफ से बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है, पेड़ ऐसे आते हैं ऐसे तो ऊपर से भी बंद कर देते हैं उसको, और प्रवेश द्वार पर सखी खड़ी रहती है और जो योग्य है उनको अंदर भेजते हैं। लेकिन सखिया और राधा रानी और कृष्ण सब लोग लीला कर सकते हैं। एक होता है निवृत्त निकुंज, वो निवृत्त निकुंज होता है, उसमें सब व्यवस्था सखी करते हैं लेकिन केवल जाते अंदर राधा और कृष्ण हैं, और कभी कभी गिने चुने दो चार सखियाँ। उसमें अति अति अंतरंग लीलाओं का आयोजन होता है, सब सखियाँ रहते हैं, दूर रहती हैं, अंदर वो लीला करते हैं, जब चाहे बीच में जाते हैं, भोजन करा के आते हैं, गीत गाते हैं, ऐसा यहाँ पर इंतजाम है। तो यहाँ की लीला ऐसी है कि यहाँ पर वृंदा देवी के निर्देश में जब यहाँ लीला करने का आयोजन होता है तो राधा रानी का श्रृंगार कोई सखियाँ करती हैं, श्याम सुंदर का श्रृंगार सखियाँ करती हैं, फिर उनको एक जगह मिलाते हैं, फिर वहाँ से एक हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर श्याम सुंदर जी राधा रानी को लेकर अंदर प्रवेश करने लगते हैं। प्यारी जू आगे चल गहवर वन भीतर, जहाँ बोले कोयलरी, जहाँ पर कोयल सुंदर सुंदर पक्षी बोल रहे हैं, ऐसे सुंदर वन में हे राधे चलो हम प्रवेश करते हैं। तो कैसे प्रवेश करते हैं आप सब लोग चिंतन कीजिए उसके ऊपर। एक हाथ में राधा रानी का एक हाथ पूरा श्रृंगार किया हुआ है, पूरा वो पकड़ा हुआ है और उसको धारण करके वो उनको आगे आगे ले आ रहे हैं, और बाएं हाथ से सब बेलियों को संवार रहे हैं, लिफ्टिंग द वाइन्स एंड क्रीपर्स एंड मेकिंग वे। उसके अंदर अंदर एक हाथ से वाले बेलियों को संवारते हुए राधा रानी को अंदर ले और बहुत अंदर बहुत अंदर बहुत अंदर जाके फिर पुष्प शैया होती है, उसके अंदर पुष्प वितान होता है, फूलों के बनाया हुआ कमान होता है, उसके अंदर वो विराजमान हो जाते हैं, फिर वहाँ पर लीला आरंभ होती है। ऐसी सुंदर व्यवस्था गहिवर वन में है। तो ऊपर जो मोरकुटी है और यहाँ पर जो मान मंदिर है, यहाँ पर राधा रानी को और कृष्ण को एक बार बिठाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। बहुत देर तक अपना राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण करते हैं, कृष्ण का श्रृंगार राधा रानी करते हैं, और श्रृंगार पूरा होने के बाद में राधा रानी कहती हैं, अभी मेरे श्रृंगार का वर्णन करो आप। तो राधा रानी इतनी सुंदर लग रही थी उस समय कि कृष्ण को, श्याम सुंदर जी को ये समझाने कि अभी क्या कहूँ, किन शब्दों में उनका गौरव करूँ, सौंदर्य का कौन सी उपमा दूँ, कौन सी, व्हाट टू कंपेयर विथ। क्यों अल्लाह मचा रहे? तो फिर कृष्ण जो है यहां वहां देखते हैं किसी की तुलना करने के लिए, कोई वस्तु दिखती नहीं जो राधा रानी के मुख कमल को वर्णन के योग्य हो। तो फिर वो आकाश में देखते हैं, और जब आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा दिखती है, तो लगता है कि चंद्रमा बहुत सुंदर उपमा है। तो बड़े प्रेम से गौरव करने के हेतु उनके मुख कमल को चंद्रमा की उपमा देते कि आपका मुख कमल चंद्रमा के समान सुंदर है। तो बजाय प्रसन्न होने के राधा रानी बहुत क्रोधित हो जाती है, मान कर बैठती है। उसके कई कारण बताए हैं, वो क्यों मान करती है। जैसे हम लोगों को अगर हमारी स्त्रियों को चंद्रमा की उपमा दे तो कितने खुश हो जाएंगे, लेकिन राधा रानी को जब चंद्रमा की उपमा मिलती है तो वो नाराज हो जाती है। वो कारण भी देती है, वो कहती है कि हमारा सौंदर्य जो है उसमें कोई दाग नहीं है, चंद्रमा पर बहुत दाग है। हमारा सौंदर्य कभी भी क्षीण नहीं होता है, यानी इट डजंट डिके, कभी वो कम नहीं होता है। चंद्रमा जो है वो कम 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 हो जाता है, और वो अमावस्या में दिखता ही नहीं है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो चंद्रमा का सौंदर्य कम और ज़्यादा होने वाला है, हमारा सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता है और हमेशा बढ़ते रहता है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं। चंद्रमा जो है पर प्रकाशित है, सूर्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त करता है और फिर वो प्रकाशित दिखाई पड़ता है। इट लुक्स लाइक लाइटेड बट इट इज नॉट लाइटेड बाय इट्स ओन लाइट, इट गेट्स लाइट फ्रॉम सन। तो हमारा सौंदर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, हमारा सौंदर्य खुद का है, इट्स माय ओन। तो ये सब तरह से आपकी तुलना गलत है, और फिर भी मैं ये सारी तुलनाएं सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक कारण के लिए ये चंद्र की तुलना मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरी जो प्रतिस्पर्धी है चंद्रावली गोपी, उसका आधा नाम इस चंद्र में है, इसलिए मुझे एक तुलना सहन नहीं हो सकती। किसी भी तरह से मेरी तुलना चंद्रावली के साथ में आप आधे नाम से भी करोगे तो हमें यह सहन नहीं हो सकता है। ऐसे कहकर वो चली गई, वो पर्वत पर जाकर बैठी। बहुत लंबी कथा है वो, ललिता को भेजा कृष्ण भगवान ने, राधा रानी रूठ गई, अरे क्या सोचा था और क्या हो गया, है ना। विचार तो किया था उनको प्रसन्न करने का, लेकिन हो गया उल्टा। तो फिर वो ललिता को भेजते हैं, ललिता को देखते ही वो और ऊपर चढ़ती है। फिर ललिता वापस आके बोलती है नहीं मान रही है, फिर वो जाओ और मनाओ, तो और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, करते करके आवत जावत हार गई रही। इस तरह से ललिता जी बहुत थक जाती है, यहाँ से कृष्ण भगवान भेज रहे हैं, वहाँ से राधा रानी ठुकरा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है। तो आखिर में वो आखिरी प्रयास करने के लिए श्री कृष्ण भगवान को, रोते हुए श्री कृष्ण भगवान को हाथ पकड़कर ऊपर ले जाती है मान मंदिर की चोटी पर। वहाँ पर वो बैठी हुई है, रूठ कर रो रही है, क्रोध भी है, रो रही है, बड़ी नाराज है। तो वो राधा रानी का और कृष्ण का हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी उसको झटकार देती है। फिर श्री कृष्ण भगवान अपना मोर मुकुट उतारते हैं, उनके चरणों में रखते हैं, फिर भी नहीं मानती है। फिर कृष्ण अपना सर उनके चरणों में रखते हैं, फिर भी नहीं मानती। फिर वो रोते हैं और अपने अश्रुओं से उनके पैर धोते हैं, चरण कमल को सिंचन करते हैं, फिर भी नहीं मानती है। इस तरह से सारे प्रयास जो है वो हार जाते हैं। फिर सब सखियां परेशान हैं कि क्या करें, अभी लीला कैसे होगी। तो फिर ललिता देवी अचानक कुछ आके कृष्ण के कानों में बोलती है, और अचानक कृष्ण भी चले जाते हैं और ललिता भी चले, सब चले जाते हैं, और राधा रानी अकेली वहाँ बैठती है। उसके थोड़ी देर के बाद में जहाँ पर मोर कुटी है ना, वहाँ पर एक सुंदर मोर आता है और वो नृत्य करने लगता है। और सब सखियां उनको देखने लगती है, और वो इतना सुंदर नृत्य करता है कि फिर सखियां भाग भाग के राधा रानी को कहती है, अरे आप रोट कर बैठी हो, देखो कितना सुंदर मोर नृत्य कर रहे हैं। पहले तो मानती नहीं है, फिर उसको मनाते हैं कि देखो देखो, तो फिर देखती है, जब देखती है तो मोहित हो जाती है। राधा रानी को देखते हुए देखकर मोर को बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रेरणा आती है उसको, बड़ा उत्साह आता है, और वो सुंदर नृत्य करने लगता है। उसको देखकर कई सारे मोर आ जाते हैं, आकाश में बादल इकट्ठा होते हैं, हल्की हल्की बरसात होती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, सुगंधित हवा बहने लगती है, सब मोर अपना पंख जो है वो फैला कर नृत्य करने लगते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है। फिर राधा रानी जो है वो मुड़कर सामने देखने लगती है और उस नृत्य में इतनी रुचि लेती है, इतना सुंदर नृत्य होता है कि आखिर में राधा रानी को इतनी प्रेरणा होती है कि वो सीधे वहां से उठकर उस मोर के साथ मोरनी बनकर नाच करने लगती है। मोर को बड़ा उत्साह आता है और दोनों मिलकर बहुत देर तक नृत्य करते हैं, और बहुत देर को नृत्य करने के बाद में वो दोनों को एक दूसरे के गले मिलते हैं। वो आपने भी कैसे वर्णन करो, वो मोर का पंख खुला हुआ है ऐसे, एक तरफ कृष्ण है, इस तरफ राधा रानी ऐसे हैं, और दोनों ऐसे मिलकर ऐसे बना हुआ है सीन। उसमें वो जब उनको आलिंगन करते हैं तो राधा रानी को ध्यान में आता है कि ये श्याम सुंदर है, तब तक उनका मान नष्ट हो जाता है। तो ये मोर कुटिया जहां पर ये लीला हुई थी, और ये एक ही लीला नहीं है, यहां पर रोज मोर की लीला होती है, और विविधतापूर्ण, फुल्ली फुल ऑफ वैरायटी ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ पीकॉक्स। जैसे एक बार यहां पर श्री कृष्ण भगवान अपने मोर को लेके आते हैं, राधा रानी अपनी मोरनी को लेके आते हैं, और दोनों को नृत्य करवाते हैं, और अपने मुरली और कंगन और पायल इनका ही म्यूजिक देते हैं, और म्यूजिक भी देते नहीं, नेचुरल म्यूजिक ऑफ फ्लूट द बैंगल्स एंड द एंकल बेल्स, इसके म्यूजिक से मोरों को प्रोत्साहन देती है, और फिर मोर मोरनी नृत्य करते हैं, उनको देखकर बहुत मोर मोरनी आती है, और सबका नृत्य जो है वो सब देखते हैं और आनंद लेते हैं। एक बार ऐसा वर्णन है कि राधा और कृष्ण ऐसे मान मंदिर पे दोनों आए और हवा बहने लगी, तो ऐसे उनके दुपट्टे हवा में उड़ने लगे, ऐसे सुंदर ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे जो लहर लहराते हैं ना वो झंडे, दे मूव ना लाइक द फ्लैग्स, ऐसे उनके दुपट्टे ऐसे दोनों के हवा में उड़ने लगे। उस समय बादल आए और मंद मंद सुंदर सुंदर कर्ण मधुर गड़गड़ाहट करने लगे, बूंदे प्रेम की बूंदे बहन बरसाने लगे। उस समय राधा और कृष्ण दोनों नृत्य करने लगे, मोर बने नहीं है, मोर जैसे नृत्य करने लगे। फिर सखियां भी मिल गई, मोर मोरनी मिलकर सब नृत्य करने लगे। एक बार वो मोरनी बनकर आई, स्वच्छ प्रत्यक्ष मोरनी बनकर ये मोर बनकर आए, और दोनों ने नृत्य किया, और सखियां भी फिर उनको ज्वाइन हो गई। इस तरह से कई प्रकार की मोर लीलाएं यहां पर रोज चलती रहती। तो मोर कुटी में तो ये मोर लीला जो है यहां का बहुत उत्कट लीला है, वेरी इंटेंस एंड डीप पास्ट टाइम ऑफ राधा एंड कृष्णा। कई प्रकार के मान राधा रानी करती है, और श्री कृष्ण भगवान उनको कई प्रकार से रिझाते हैं, कभी मुरली बजाकर रिझाते हैं, इसका भी वर्णन है, कभी मोर बनकर रिझाते हैं, कभी मोर का भेष बनाकर रिझाते हैं, कभी मोरों को लाकर नृत्य कराते हैं, कभी मोरों को कहना दे गिव डायरेक्शन, दिग्दर्शन करते हैं नृत्य करने के लिए। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ। फिर यहाँ पर राधा रानी और श्याम सुंदर अपने मोरों को अपने गोद में लेकर बैठते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको प्रेम करते हैं, मोर भी भाव विभोर हो जाते हैं उनके प्रेम को प्राप्त कर, अपने मोरों को मुरलियों को संभाल कर रखते हैं, बहुत कीप देम विद ग्रेट लव। ऐसा यहाँ पर बहुत प्रेम का लीला है। और मोर के विषय में मुझे ऐसी याद आती है कि एक बार एक ऐसा मोर नंदगांव गया था, और उसने कृष्ण को पुकारा था, कई नामों से पुकारा, कोई प्रतिसाद नहीं मिला, नो रिस्पॉन्स। फिर वो किसी ने कहा अभी यहाँ पर अभी आप बरसाने चले जाओ और राधा रानी को पुकारो। तो यहाँ पर आकर राधा रानी का नाम पूर्ण होने के पहले राधा रानी प्रकट हो गई, और मोर रोता रोता गया राधा रानी के पास, गोद में लिया, प्यार किया और पूछा क्या बात है। वो कहे हम नंदगांव में गए, हमने कृष्ण को पुकारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कहते कोई बात नहीं, आप मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा जाओ और कृष्ण को पुकारने के बदले में राधे राधे पुकारो, उन्हीं को पुकारो लेकिन राधे राधे पुकारो। तो कृष्ण दोबारा, वो मोर वहां दोबारा गया और राधे राधे पुकारा, तो रा और धे पूरा होने के पहले कृष्ण प्रकट हो गए। और कृष्ण प्रकट होते ही मोर को गोद में लिया कि कौन मेरी प्रियतमा का नाम पुकार रहे हैं, और पुकार कर उसको गोद में लिया, बहुत प्रेम से दुलारा। तो मोर जो है ना वो भाव विभोर हो गया, स्टार्टेड शिवरिंग ट्रेम्बलिंग विथ लव। तो उस भाव में उसके पंख झड़ गए, तो भगवान ने उसका पंख उठाकर अपने सर पे लगाया और मोर मुकुटधारी बन गए वो। तो ये जो कुटी है ऊपर, उस कुटी में, वो तो कृष्ण भगवान के समय की लीला मैंने बताई। उसके बाद में अभी 300-400 साल पहले एक अंधे बाबा रहते थे यहाँ पर, भक्त थे भगवान के बड़े, राधा रानी के, और वो कुटी पर रहते थे मोर कुटी में। तो उनको, वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनको ना एक सिंह उनका शिष्य था, लायन वॉज डिसाइपल ऑफ दैट लायन बाबा। और वो शेर सिंह के गले में एक थैली डालते थे वो, और सिंह जाकर मानपुर में भिक्षा करता था और लोग उसके थैली में रोटी डालते थे और वो रोटी करके ऊपर आता था और महाराज जी रोटी निकाल कर खुद खाते थे और बची रोटी वो सिंह खाता था। आपके घर में कोई बेल बजाया, बेल बजाया और आप बाहर खोलने के, तो शेर दिखाई पड़ा या सिंह दिखाई पड़ा तो कैसे होगा? तो बेल बजते भवती भिक्षान देही, तो सामने शेर खड़ा होता है, सॉरी सिंह खड़ा होता है। ऐसे महात्मा थे वो। तो एक दिन उस महात्मा के स्वप्न में राधा रानी आई और स्वप्न में राधा रानी ने अपनी पूरी मोर लीला दिखाई उसको। जैसे श्याम सुंदर जी मोर बनकर नाच रहे हैं, राधा रानी स्वयं मोरनी बनकर नाच रही है। बहुत देर तक नृत्य दिखा और एंड में जो जब नृत्य समाप्त हुआ तो वो मैंने बताया ना, कृष्ण ऐसे और राधा रानी ऐसे, पूरा एक सर्कल ऐसा बना हुआ है हार्ट की तरह। तो वो आखिरी जो पोज थी उनकी, आखिरी स्थिति थी, उस पर वो लीला समाप्त हुई और राधा रानी उनको कही, उन्होंने कहा कि आपको ये जो लीला मैंने दिखाई वो आखिरी सीन का पेंटिंग आपको बनाना है। तो उन्होंने कहा मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ? तो राधा रानी कहते हैं मेरी कृपा से बना पाओगे आप, मैं आपको निर्देश करूँगी। तो वो अंधे बाबा ने राधा रानी की प्रेरणा से और कृपा से अंधा होते हुए भी वो चित्रपट अपने हाथ से बनाया। और आज भी मोरकुटी में जो भगवान का वेदी होते ना ऑल्टर, उसके अंदर वही चित्रपट है, उसी की पूजा होती है। ऐसा सुंदर लीला है यहाँ पर। और यहाँ की लीला ऐसी है कि जो हमारे गुरुदेव ने हमको बताई थी, आप वहाँ देखेंगे ना जहाँ पर वो बच्चों को रास लीला करा रहे हैं, देख रहे हैं आप उधर बच्चे यहाँ पर रास कर रहे हैं, एक एक आसन भी यहाँ पर सिंहासन जैसा है, उसकी कथा गुरुदेव ने बताई थी। नमेश बैठ जाओ। तो वो लीला ऐसी है कि आप जानते हैं सब कृष्ण भगवान और सखा मिलकर सबका माखन चुराते रहते हैं हमेशा, कभी पकड़ में नहीं आते, ऐसे पकड़ लिया लगता है कि फिर भी छूट जाते हैं। और होता क्या है कि खुद भाग जाते हैं, फिर मधुमंगल जैसे मोटे ग्वाल बाल पकड़े जाते हैं क्योंकि वो भाग नहीं सकते इतनी गति से, फिर उनको बहुत पीटा जाता है, कभी कभी बाकी लोगों को भी पीटते हैं और ये दोनों भाग जाते हैं, कभी कभी सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन रोज सबको तंग करते हैं और सब तो तंग हो जाते हैं लेकिन रोज सोचते हैं कि हमारे घर में आके चोरी करें। ये कुछ समझ में नहीं आता ना, उनको पकड़ना भी है, उनको खिलाना भी है, उनके लिए मक्खन बनाते हैं, आए तो कंप्लेंट करते हैं। ये सब प्रेम लीला है, इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं, इनकंसीवेबल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो एक दिन वो सखियाँ सब मिलकर सोचती है कि हम लोग ना अभी ऐसा, क्योंकि वो जब भी जाते हैं ना नंद भवन में अपनी शिकायत लेकर, तो यशोदा कहती है कि मेरे घर में तो इतना सुंदर मक्खन बनता है, मैं गले तक खिला कर भेजती हूँ, कोई चांस ही नहीं है आपके घर में चोरी करने का। लेकिन वो कहती है चोरी करता है हमारे घर पे। तो वो कहती है बार बार तो वहाँ की कंप्लेंट करते रहते हो, एक बार तो कम से कम रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ उसको तो मैं मान लूँ, क्योंकि ये बड़े भेस बदलता है, कभी बालक बनता है, कभी उन कौन बनता है, कभी क्या बनता है, कभी खिसल जाता है हाथ से, कभी पकड़ में नहीं आता है। तो सोचती कि एक बार ऐसा षड्यंत्र करना चाहिए कि इसको पकड़ना चाहिए रंगे हाथ माखन खाते हुए। तो एक कमरे में फिर बहुत सारे मटके जो है ना, वो आमतौर पे उसको ऊंचा लटकाते हैं, उस दिन बहुत नीचा लटकाए हैं जिससे हाथ में आ जाए, चढ़ने की जरूरत नहीं है। और सभी मटकों को घंटी बांध देते हैं। और वृंदावन धाम में ना वो सब पेड़ भी बोलते हैं, गाय भी बोलती है, घंटी भी बोलती है, सब बोलते हैं, सब सजीव हैं, सब सचेतन है, एवरीबॉडी इज कॉन्शियस हियर, सो कॉल्ड कॉन्शियस अनकॉन्शियस थिंग्स ऑल आर कॉन्शियस हियर। तो गोपियाँ सब घंटी से बताती है, देखो जब वो आएंगे ना, जब यहाँ से मक्खन निकाल कर मुँह में डालेंगे, मतलब हाथ में मक्खन मुँह में मक्खन, ऐसा स्थिति होगी, तुरंत बजना अब जोर जोर से। और सब लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं, वो तय कर लेते हैं कि तुम्हें कृष्ण को पकड़ना है, तुम्हें बलराम को पकड़ना है, तुम्हें मधुमंगल को पकड़ना है, इसको सुदामा को पकड़ना है, सब पैर बना। एंड मौके पे बहुत सारे ग्वाल वाल, बहुत सारे गोपियाँ, तो किसको पकड़े में तो चक्र में सब भाग जाते हैं, इसलिए मैच फिक्सिंग कर देते हैं किसको किसको पकड़ना है। बस आपको किसको देखना नहीं, आपको कल मधुमंगल देखना है, उसको पकड़ना है आपको, बाकी सब हम लोग अपने अपना पकड़ेंगे। ऐसा सब पूरा सेटिंग करके वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर निश्चित रूप से कृष्ण बलराम अपने साथियों को लेकर आते हैं। अंधेरा कमरा, सब खिड़कियां बंद, सब दरवाजे बंद, एक ही दरवाजा खुला, सब मटके नीचे। बोले आज तो बड़ा भाग्य खुल गया, बिना परिश्रम के माखन मिलेगा। वो जाते हैं पास में, देखते हैं अरे सबके ऊपर घंटी लगी हुई है, हाँ कुछ षड्यंत्र है इसके अंदर। तो घंटी से बात करते, अरे घंटी बताओ क्यों यहाँ पर तुम खड़ी हो? कहते कुछ नहीं, गोपियों ने लगाया, ठीक है। तो कहते देखो मेरे आपको आदेश है, मेरा आपको आदेश है कि आपको बजना नहीं आज, जब मैं खाऊंगा तो आपको बजना नहीं है। बोलो ठीक है स्वामी, आप हमारे मालिक हैं, आपके आज्ञा कैसे हम टाल सकते हैं, हम नहीं बजेंगे। तो फिर सब लोग घंटियों को समझा के अपना काम शुरू करते हैं, सब लोग खाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण अपना हाथ डालकर अपने मुंह में डालते हैं माखन को, तुरंत डंग 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 सब घंटियां बजने लगती है। सब गोपियां पता नहीं कहां से आते झपक पड़ती है, सबको पकड़ लेती है। लेकिन इस चक्र के अंदर सब लोग छुटकारा प्राप्त करके ऐसे करते हैं कि एक खिड़की ऊपर के खोल देते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एकदम झट से सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। सबसे पहले कृष्ण बलराम निकलते हैं, उसको ऊपर से खींचते हैं सब लोगों को, खिड़की से सब लोग चढ़ रहे हैं, ऊपर से खींच रहे हैं, नीचे से गोपियां खींच रही हैं पैरों से, सब लोग फिर भी भाग जाते हैं। एक बेचारा उसमें फंस जाता है क्योंकि उसका पेट खिड़की से बड़ा था, तो वो बेचारा, उसके दोनों हाथ कृष्ण बलराम के हाथ में है, उसको दोनों पैर गोपियों के हाथ में है, और वो ऊपर खींच रहे हैं और गोपियां उसको नीचे खींच रही है। फिर कौन जीतता है? ग्रेविटी किस तरफ है? गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है ना, तो वो खींच रहे और सब जोर लगा के खींच रहे हैं, ऊपर से खींच रहे हैं, वो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो बहुत मुश्किल होता है। तो बाद में गोपियां ऐसा खींचते हैं कि धाड़ करके मधुमंगल नीचे गिर जाता है। अभी सब ग्वाल बाल ऊपर, सब भाग रहे हैं, मधुमंगल सबके चंगुल में, इतनी सारी गोपियां एक मधुमंगल, वो सब उसको मुक्का मारने लगते हैं, तमाचा मारने लगते हैं, वो क्या बहुत पीटती है उसको, और बहुत जोर से चिल्लाता है कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ। तभी कृष्ण बलराम भी चिल्ला रहे हैं, मधुमंगल भागो भागो। बोले कैसे भागू, मैं तो फंस गया इधर बीच में। तो वो जो भागो भागो की आवाज हो वो कम कम हो जा रही है, क्योंकि दूर जा रहे हैं ना, दे आर गोइंग फार, तो उनकी आवाज भी कम कम हो रही है, चिल्ला रहा है। लेकिन कुछ देर बाद कृष्ण बलराम को लगता है कि देखो अपने दोस्त मधुमंगल को ऐसे संकट में छोड़कर अकेले भागना अच्छा नहीं, बेचारा कितना व्याकुल है, कितना असहाय है, हेल्पलेस, उसको बचाना चाहिए। तो फिर वो लौट के आते हैं, ऐसे लौट के आते हैं ऐड से, सब गोपियों को सवाल पूछते हैं, आपको पता है किसको मार रहे हैं आप? ये सांदीपनी का पुत्र है, सांदीपनी और पूर्णमासी का ग्रैंडसन है, पूर्णमासी का पुत्र सांदीपनी मुनि और सांदीपनी पुत्र का मुनि का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, ये इसको पीट रहे हो, शर्म नहीं आती? हम लोग सब वैश्य हैं, हम गाय चराने वाले हैं, ब्राह्मण हमारे पूजनीय वंदनीय होते हैं, और तुम ब्राह्मण के पुत्र को मार रहे हो? अरे तुम इसको मारोगे, इसका अपराध करोगे, तो तुम्हें ऐसे पति मिलेंगे जिसकी पहले 7 पत्नियां हैं और खुद बुड्ढे हैं वो। अभी गोपियां इतनी सीधी हृदय की होती है ना, वो जब सुनती है ना कि अरे बाप रे ऐसे बुड्ढों से शादी होगी, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी होगी और 7 पहले पत्नियां होगी, तुरंत छोड़ते हैं मधुमंगल को, बाप रे, तुरंत पैर पड़ने लगती है, दंडवत करने लगती है, माफी मांगती है, हे ब्राह्मण देवता माफ करो वगैरह वगैरह। तो ब्राह्मण देवता जो पहले पीट कर रो रो के पुकार रहे थे, ऐसे ऐठ से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण देवता को पूछते हैं कि क्या किया जाए, तो आप हमारा अपराध माफ करेंगे? बोले सब लोग घर चले जाओ और सब ढेर सारे लड्डू बना के लेके आऊं। उसमें एक कंडीशन है, किसी का भी लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, हर एक का लड्डू अलग होना चाहिए और वो भी बहुत मात्रा में होना चाहिए। तो ऑलरेडी उनको सांप का डर था, सब लोग घर चले गए और ढेर सारे लड्डू बना के आए और उस आसन पे उनको बिठाया। वो जो आसन है वहाँ पर है ना, वहाँ पर उनको बिठाया, फूलों का आसन बनाया, फूलों की माला पहनाई, उनके पाद प्रक्षालन यानी चरण धोए, उनके उनकी आरती उतारी, उनके लिए गीत गाए और फिर उनको लड्डुओं का भोग लगाया। और ब्राह्मण देवता ने बड़े मजे से सब लड्डू खाए, फिर आशीर्वाद दिया कि आपके आपका विवाह जो है बुड्ढे से नहीं होगा, जिसके साथ पत्नियां उसके साथ नहीं होगा, आपके मन में कौन इष्ट है उससे आपका विवाह होगा। ऐसे करके बड़े इत्मीनान से वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये लीला भी यहाँ पर हुई थी। इस तरह से बहुत सुंदर स्थान है ये प्रेम की लीलाओं का। कहते हुए और सुनते हुए केवल प्रेम का अनुभव होता है, ओनली लव, कुछ और है ही नहीं। दिव्य प्रेम, आत्मा प्रेम, ऐसा ही हम लोग बरसाना के भी हार्ट में बैठे हुए हैं अभी। और उस हार्ट को आपने दीपकों से प्रज्वलित करके सुशोभित किया है। यू हैव ब्यूटिफाइड द हार्ट विद द लैम्प्स ऑफ लव। ये दृश्य भी हृदय में शाश्वत रूप से बिठाने वाला दृश्य है। द सीन इज सपोज टू बी परमानेंटली एम्बार्क्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द हार्ट इन इनर चेम्बर्स। इसी के आगे जाएंगे, एक गांव चित्रा सखी का है, धर्म बानू की वो बेटी है। और चित्रा सखी अपने पिताजी की तरह बहुत ही शास्त्र में निपुण है, खास करके पामिस्ट्री, हस्त सामुद्रिक, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, भविष्य कुंडली शास्त्र और बहुत सारी वैदिक कलाएं उसके पास में। चित्रा सखी की ऐसी कला है कि वो पक्षियों की भाषा समझती है। कितने भी किसी प्रकार के पक्षी हों, वो जो कुछ बोलते हैं वो समझती हैं और सारे पक्षी उसके साथ संवाद करते हैं, उसके साथ बात करती हैं और सबको कृष्ण और भगवान के बारे में, कृष्ण राधा रानी के बारे में बताती रहती है। उन्होंने अपने सारे पक्षियों को ऐसे मेंटेन करके रखा है चित्रा सखी ने। वो चित्रा सखी जो है चित्रपट बनाने में बहुत कुशल है। कितना समय अपने पास? 7-10 हो गए, बता देते हैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में। चित्रा सखी का ये निवास है तो उसका गौरव करना भी जरूरी है। चित्रा सखी चित्रपट बनाती है, पक्षियों से बात करती है और उनकी एक विशेषता है कि वो यहाँ के पेड़ पौधों को भी संभालती है। इट इज़ हर ड्यूटी टू मेंटेन ऑल द ट्रीज टू प्लीज राधा एंड कृष्णा। तो एक बार क्या हुआ, श्रीदामा जो राधा रानी के बड़े भाई हैं, वो कृष्ण के बड़े निकट सखा हैं, द डियर मोस्ट। वो ना, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो दिन भर मजे में रहता है गौचारण करते करते, लेकिन जब शाम होती है ना तो दुखी होने लगता है कि अभी कृष्ण से विरह होगा, अभी वो अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगा। तो वो रात भर जगता है, उसको नींद नहीं आती, रोते रहता है वो कृष्ण की याद में। तो एक दिन कृष्ण को आके बोल लेता है वो कि मैं ना रात रात सोता नहीं हूँ और हो सकता है एक दिन मैं मर जाऊंगा रात को, इतना मुझे आपकी याद आती है, मैं रह नहीं पाता आपके बिना। तो कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों, आप रहते नहीं हो, आपके बिना मुझे जल भोजन अच्छा नहीं लगता है, नींद भी नहीं आती है। तो कहते क्या किया जाए, तो कहते हैं कि आपका एक चित्रपट अगर मिलेगा बनवा के तो मैं चित्रपट को देखकर थोड़ा विरह के शांति करूँगा। तो कृष्ण श्याम सुंदर जी अपने घर गए, यशोदा माई से बोले मेरा एक मित्र है श्रीदामा, बहुत व्याकुल रहता है, रोता है, रात रात जगता है, तो वो कह रहा है कि मेरा एक चित्रपट चाहिए, तो मैया मेरे चित्रपट का इंतज़ाम करो। तो मैया भी थोड़ा सा ऐसा ही मूड में थी, लाइट मूड में। तो मैया कहते हैं कि अरे उसमें क्या बड़ी बात है, एक पेपर लो, एक ब्रश लो, काला रंग लो, दो चार स्ट्रोक मार दो, हो गया आपका चित्रपट। हाँ, टेक अ पेपर, टेक अ ब्रश, टेक ब्लैक कलर, पुट 2-3-4 स्ट्रोक्स हियर एंड देयर, योर पिक्चर इज रेडी। तो श्री कृष्ण भगवान बड़ा दुख होता है, रोने लगते हो, मैया आप मजाक कर रही हो, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, आई एम सीरियस, यू आर जोकिंग, मेरा दोस्त मर जाएगा अगर तुम ऐसे बात करोगी। तो फिर माँ समझ गई कि भाई बहुत गंभीर बात है, तो वो तुरंत चित्रा सखी को बुलाती है। जितरा सखी भाग के आते हैं, यशोदा मैया बुला रही है, कुछ सेवा दे रही है, बड़े भाग्यवान समझती है, भाग भाग के आती है और कहती है मैया क्या सेवा है, तो एक मेरा लाला का चित्रपट बना दो, उसके दोस्त को देना है। तो तुरंत उस सबको साहित्य इकट्ठा किया, तुरंत घर पे आए, वो चित्रपट बनाना शुरू की, प्रयास उसके प्लानिंग किया। लेकिन जैसे ही वो चित्रपट बनाने के लिए बैठी तो उसको उसके मन में अनंत छटाएं कृष्ण के प्रकट हो गई, मेनी मेनी दर्शन सब कृष्णा, कभी हंस रहे, कभी रो रहे, कभी चिढ़ा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी ऐसे क्राउड हो गया मन में उसके। अभी कौन सी छवि पर चित्रपट बनाए, आप देखते हैं ना, समझो आपका अगर चित्रपट निकालना है तो आपको वो चित्रकार क्या बोलेगा, अभी ऐसा बैठो, थोड़ा तेज नजर देखो, थोड़ा स्माइल दो, तो आपको वैसे ही बैठना है, फिर वो पेंटिंग करते रहेगा उसका। अभी अगर इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उधर हिल रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी हाथ हिला रहे हो, तो वो चित्रपट निकालेगा कैसे आपका। तो एक स्थिर छवि होना जरूरी है। तो एक स्थिर क्या, अनंत छवियां उसके मन में प्रकट हो जाती है, तो वो कन्फ्यूज हो जाती है कि मुझे इतनी अच्छी सेवा मिली है और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूँ, तो बड़ी रोने लगती है, परेशान हो जाती है। मैया राधे राधे, मैया शांति रखो, तो बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ऐसा कारण है जो मैं सेवा ही शुरू नहीं कर पा रही हूं, क्या मेरा अपराध हो गया। कुछ देर चिंतन करने के बाद दुख में उसको एक साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन, कि मैंने ये सेवा करने के पहले राधा रानी की कृपा और अनुमति तो ली नहीं, तो समझ गए कि मेरे हाथ से अपराध हो गया। हर सेवा जो श्याम सुंदर की होती है वो राधा रानी की कृपा से संपन्न होती है। यू कैन सर्व श्याम सुंदर ओनली बाय द मर्सी ऑफ राधा रानी। तो भाग कर राधा रानी के पास जाती है, उनको चरणों में गिर जाती है, शरण जाती है, कहती है माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझे ये सेवा मिली थी, मैंने आपका आशीर्वाद नहीं लिया। तो राधा रानी उनको आशीर्वाद देती है। जैसे ही वो आशीर्वाद देती है, श्याम सुंदर की एक सुंदर सी एक ही छवि उसके मन में आकर स्थिर हो जाती है। फिर वो श्याम सुंदर का चित्रपट निकालती है, वो चित्रपट लेकर नंद भवन जाती है, यशोदा मैया को देती है, यशोदा मैया उसको श्याम सुंदर को देती है, श्याम सुंदर उसको श्रीदामा को देते हैं, और श्रीदामा उसको देखकर कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक अपने विरह को कम अनुभव करते हैं। तो ऐसी लीला, ये मैं नाटिका यहाँ पर देखी थी मैंने, इस लीला का ड्रामा आई हैव सीन हियर इन बरसाना। बहुत सुंदर स्थान है, इसको ग्रहण करो, त्वचा से, आँखों से, कानों से, हर प्रकार के इंद्रियों से आप ग्रहण करो उसको, इस स्थान को। इसके आगे जाकर दो जगह हैं, एक बिहार कुंड है, बिहार कुंड जो है उसमें शिवजी आते हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो भी आते हैं उन सबको सखी बनना पड़ता है, तो शिव जी आकर खुद सखी बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं अभी साड़ी पहनने लगेगा तो बहुत मुश्किल हो गया ना मुझे, आई डोंट नो हाउ टू वेयर। तो वैसे शिव जी भी ऐसे मेहनत करने लगे लेकिन यश नहीं मिल रहा है उनको, बार बार लहंगा फरिया गिर रहा है नीचे। उतने में वहाँ पर गौरी जी प्रकट होती है और कहते हैं गौरी जी के प्रकट होने से वो उधर गौर तेज प्रकट होता है, इसलिए उस कुंड का नाम गौरी कुंड भी है, बिहार कुंड का, और एक नाम गौरी कुंड भी है, एक नाम माहेश्वरी सर भी है, क्योंकि महेश्वर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए थे तो उनका भी नाम है उसको, माहेश्वरी सर, बिहार कुंड या गौरी कुंड। तो गौरी के तेज से प्रकट होने के बाद गौरी कहते हैं अरे तुम पुरुषों को तो कैसे पता श्रृंगार कैसे किया जाता है, आओ मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। तो शिव जी का श्रृंगार पार्वती जी ने किया है, उनको सुंदर सखी बनाया है और सज धज कर कहा अभी जाओ और राधा रानी को पुकारो। फिर शिव जी की शिव गौरी के द्वारा श्रृंगार प्राप्त करके फिर सखी बनकर फिर शंकर भगवान राधा रानी को पुकारते हैं, राधे, राधे! किशोरी, किशोरी दया करो। ऐसे यहाँ पर सब लोग आते हैं, संत ऋषि मुनि भक्तगण देवता सब आकर सखी बनकर यहाँ पर राधा रानी को पुकारते हैं, सब यहाँ पर पुकारने के लिए आते हैं। आगे दोहनी कुंड है, वो वृषभानु महाराज के गाय को दोहन करने की जगह है, उनकी जो इतनी लाखों गाय थी सबका दूध निकालकर उस कुंड में जमा करते थे, इतना विशाल कुंड है, कम से कम 50 एकड़ का वो, आई डोंट नो 25 30 एकड़ का होगा, इतना विशाल कुंड है। 5-6 मंजिल की बिल्डिंग कितनी ऊंची होती है, उतना गहरा है वो। वहां पर राजा रानी के पिताजी की गायों को सब दोहन करते थे। एक बार वहां पर कृष्ण आते हैं और ऐसे अनजान बनकर पूछते हैं राधा रानी को कि मैं आपकी गाय को दूध निकाल सकता हूँ क्या? राधा रानी हाँ कहती है। फिर राधा रानी उस गाय के बछड़े को अपने हाथ में पकड़ती है और श्री कृष्ण आसन जमा कर दूध निकालना आरंभ करते हैं। पता है ना कैसे बैठते हैं, दो पैर फैलाकर और दो गाय के पैरों को पीछे से दोरी से बांध देते हैं, छोटी दोरी से बांध देते हैं। पहले बछड़े को मुंह लगाते हैं, फिर तो उसके बाद में उसको बाजू में करते हैं, फिर उसका दूध निकालते हैं। तो राधा रानी बड़े चाव से देख रही है, अरे कितना सुंदर दूध दोहन कर रहे हैं, हाउ एक्सपर्ट ही इज। तो मग्न हो जाती है और कृष्ण भी मग्न हो जाते हैं और अचानक जो एक थन जो है ना उसको कहां हो जाता है, वो राधा रानी के मुख पर। राधा रानी बहुत चौंक जाती है उस समय, एकदम दोनों मग्न है, वो मग्न है ये मग्न है, अचानक दो हाथ में दो थन है ना, तो एक थन बाल्टी में गिर रहा है, एक थन ऐसे करके राधा रानी के मुंह में डालते हैं। तो राधा रानी बाहर दिखाती है कि बहुत नाराज हो गई है और क्रोध आ गया, अंदर से बहुत खुश हो जाती है। तो ये लीला वहां पर है। तो कभी ऐसे ही आते हैं, कभी प्रेम से सब गायों को दूध दोहन करते हैं, कभी राधा रानी उनको अपनी गायों का दूध पिलाती है, कभी अपने गाय से बनाए हुआ दही पिलाती है, बड़े प्रेम की लीलाएं होती है वहां पर। और एक जमाने में वहां पर, मतलब मैंने भी देखा है, एक जमाना क्या अभी की बात है ये 25-30 साल पहले की बात, ऐसे कदम के पेड़ हुआ करते थे धोनी कुंड पे और बाकी जगह पर, ब्रज में सब जगह पर टेर कदम पे और जहां जहां कदम खंडी है वहां पर कदम के पेड़ पर रेडीमेड दोना बनकर आते थे, पत्तों के रेडीमेड दोना आते थे। मेरे पास फोटो भी है उसके, मैंने देखे हुए हैं, अभी तो दिखते नहीं, सब लीला समाप्त हो रही है। तो ग्वाल बाल धोनी कुंड में जाके चढ़कर पेड़ों पर वो दोने काटते थे और दही माखन खाते थे उसमें से, वो साकरी कोर की लीला है। एक बार गोपियों को कहती है कि साकरी कोर यानी जो दो पर्वत इकट्ठा होते हैं और छोटा सा रास्ता तैयार होता है, तो वहाँ पर सखियाँ कहती है कि आपको हम आज तुरंत ही अपना दही माखन दे देंगे, लेकिन आपके हाथ में देंगे तो नीचे गिर जाएगा हमारा कीमती मूल्यवान दही जो वेस्ट हो जाएगा, आप दोना लेकर आना। दोना लेकर जाते हैं तो सब लोग चढ़ जाते हैं पेड़ पर इतनी खुशी से, आज कुछ वाद विवाद नहीं, कुछ पर्दा नहीं, कुछ बहस नहीं, कुछ गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, तुरंत ही आज दही माखन मिल रहा है तो अच्छा है। भाग के चढ़ते हैं और दोना तोड़ने में व्यस्त हो जाते हैं। जब दोना तोड़ने में व्यस्त हो जाते हैं तो उनकी लटकती हुई चोटियों को वो पेड़ में बांध देते हैं, कुछ कुछ चोटियाँ एक दूसरे की बांध देते हैं, जैसे मधुमंगल कृष्ण की चोटियाँ बांध देते हैं। तो सारे अभी उतरने का प्रयास करें, सब चोटियां लटकी हुई, तो सब लोग पुकारते हैं कृष्ण बलराम बचाओ बचाओ। तो आमतौर पर जब कृष्ण बलराम को संकट आने के बाद पुकारते हैं ना, तो कृष्ण बलराम तुरंत आते हैं और संकट से बचा देते हैं। जैसे अरिष्टासुर आया, जैसे इंद्र ने वर्षा किया, जैसे केशी आया, जितने राक्षस आए सब सखाओं ने पुकारा कृष्ण बलराम, तो भाग के आके उनको बचाया। इस बार जब पुकारा कृष्ण बलराम बचाओ, तो कृष्ण बलराम की भी आवाज आई, अरे हमें भी बचाओ हमें भी बचाओ। हमारे गुरु महाराज ने पूछा बताओ इसका कारण क्या है, बोले सब जगह कृष्ण स्वामी है, बरसाने में राधा रानी स्वामी नहीं है। यहाँ पर कृष्ण भी विवश हो जाते हैं, ही बिकम्स हेल्पलेस हियर, ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड विथ लव, विथ ओवरवेल्मिंग ओवर फ्लडिंग लव। जब प्रेम के कारण, प्रेम के वजह से चोटियां बांधी जाती है तो कृष्ण भी उसको छुड़ा नहीं सकते हैं। तो फिर सभी गोपियां, सभी गोपियों की तरफ वो देख के असहायता से पुकारते हैं, क्योंकि हमारे जो मालिक है, हमारे तारणहार जो है, वो भी पुकार रहे हैं, वो भी असहाय है, हम भी असहाय है, तो वे क्या करें, गोपियों की शरण जाना जरूरी है। तो सब गोपियों के शरण जाते हैं, मन से बोलते हैं हम शरण आ गए, तो छोड़ दीजिए हमको। तो कहते हैं कि एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, कल आपको आपके नेता जो है ना सरदार, उसको राधा रानी का भेष पहनना पड़ेगा और आप सब लोग गोपियां बनेंगे, लहंगा फरिया पहनकर मटका लेकर घर से बेस्ट दही माखन बनाया मैया ने, वो सब सर पे धारण करके आएंगे, हमारी नायिका जो है सरदारनी वो श्याम सुंदर बन के आएंगी और हम सब लोग सखा बनकर डंडा लेकर आएंगे और आप नंदगांव से आएंगे, हम यहाँ से आएंगे, आपको रोकेंगे, आपका मटका फोड़ेंगे और खाएंगे, मंजूर है तो बोलो। अभी इतने पेड़ में ऐसे आप सोचो लटके हुए, ऐसे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, हाँ बोलना ही उपाय है। तो फिर वो चोटियां छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन साकरी कोर पे सब गोपियां सखा बनकर आते हैं डंडा लेकर, और सब कृष्ण भगवान और सखा लोग हैं वो सब राधा रानी और गोपी बनकर आते हैं मटका लेकर। वो वैसे ही बहस करते हैं जैसे कृष्ण बहस करते हैं, फिर सब वो डंडा से उनका मटका फोड़ते हैं और वही सब बैठकर उनका मक्खन खा लेते हैं। वो साकरी कोर की लीला है, मटकी फोड़ लीला। वहाँ पर मटकी फोड़ जहाँ फूटती है वहाँ पर चिकना ही है, वो पत्थर सफ़ेद है, क्योंकि तो पत्थर जो है ना वो पिघलते रहते हैं, जैसे भगवान की लीला होती है ब्रह्मा जी पिघलते रहते हैं, भाव विभोर होकर मक्खन की तरह मुलायम हो जाते हैं, उनके चरणों के चिन्ह, हाथ के चिन्ह, धोती के चिन्ह, फेटा के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है, इसमें अनंत कृपा के बाद ही कोई प्रवेश कर सकता है। आप लोग बड़े भाग्यवान हो, आप लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि राधा रानी हम पर कृपा करें, हमें यहाँ बार बार बुलाएं और यहाँ के भाव को हम समझ सकें, यहाँ के रहस्य को हम समझ सकें। संतों की कृपा के बिना ये सब रहस्य खुल नहीं सकते हैं। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको यहाँ पर छोटा सा, इसमें जो प्रभु जी कुछ बैठे हैं वहाँ पर पेड़ के नीचे जो मंदिर है ना, उसमें उसके आसपास ही मौनी बाबा रहा करते थे, हरिश्चंद्र बाबा भी रहा करते थे, ये सब बड़े महान विभूति थे। मौनी बाबा की कहानी ऐसी है कि मौनी बाबा कभी सोते हुए दिखे नहीं वो किसी को, ये नेवर स्लेप्ट, दिन भर राधा रानी को पुकारते थे वो, और कभी भी कुछ खाते हुए किसी ने उनको नजर नहीं आए कि कुछ खा रहे भाई, कुछ केला खा रहे हैं या कुछ पानी पी रहे हैं। केवल कभी कभी कई दिन के बाद में इधर उतर के स्नान करते थे, थोड़ा सा पानी पी लेते थे और दिन रात भजन करते थे। तो रमेश बाबा जी अपने याद में बताते हैं उनके पुस्तक में कि वो तभी बालक थे और मौनी बाबा बड़े बुजुर्ग थे, पता नहीं उनकी कितनी उम्र थी, नोबडी नोज, लेकिन ये बालक अवस्था में यहाँ पर आए थे 12 वर्ष के अवस्था में। तो एक होता ना कुतूहल होता है, एक बचपन का एक कुतूहल होता है, तो बार बार मौनी बाबा के कुटी में आते थे तो वो उनको ऐसे भगाते थे, क्योंकि मौनी बाबा कभी कभी बात करते हुए सुनाई पड़ते थे। और बाद में उन्होंने बताया बाबा ने, रमेश बाबा जी ने, कि उनकी बातों से लगता था कि मौनी बाबा राधा रानी से बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष। अगर ये कोई बीच में आते थे तो उनको भगा देते थे, तो फिर छुप छुप के बातें सुनते थे और प्रत्यक्ष राधा रानी दर्शन देकर उनसे संवाद किया करते थे। तो यहीं पर उनका देहांत हो गया, मौनी बाबा ने कई वर्ष तक यहाँ पर एकांत भजन किया है, हरिश्चंद्र बाबा ने भी किया है, उनके गुरु भी यहाँ पर आते थे हमेशा। तो ये बहुत उत्कट स्थली है, ये प्रेम की स्थली है, यहाँ पर प्रेम का भजन किया जाता है। तो हम भी यहाँ पर अभी भजन करेंगे। लीला तो अनंत है, मान लीला भी अनंत है, कई प्रकार के चीज़ों से राधा रानी रूठ जाती है, लेकिन रूठने का अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है, हमारा होता है क्रोध, जिसको हम गुस्सा कहते हैं, जो राधा रानी करते हैं उसको मान कहते हैं। मान जो है वो कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्रोध जो है वो स्वार्थ के लिए किया जाता है, जब मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, हमारा काम पूर्ण नहीं हुआ, तो क्रोध आता है स्वार्थ के हेतु, और उस क्रोध से हमारी आध्यात्मिक साधना सब जल के भस्म हो जाती है। लेकिन मान करने से, राधा रानी जब मान करते हैं तो श्री कृष्ण के और उनके प्रेम के अंदर अनंत वृद्धि होती है, अनंत रूप में उनका प्रेम बढ़ जाता है। तो केवल उस प्रेम को बढ़ाने के लिए वो मान करते हैं, मान लीला करती है। तो स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और बहुत सारे बड़े संतों ने ये लीलाएँ लिखी हुई है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ये क्रोध नष्ट हो जाए और हमारे अंदर आपको केवल रिझाने के लिए क्या आवश्यक है वही भावना उत्पन्न हो जाए। लेट ओनली दोज थिंग्स राइज इन अस विच विल हेल्प टू अस टू इंक्रीज आवर लव फॉर यू एंड योर लव फॉर कृष्ण। तभी हम प्रवचन को विराम देकर कीर्तन करेंगे। सब लोग को विनती है कुछ समय के लिए कीर्तन करेंगे, इतना सुंदर समय दोबारा नहीं मिलेगा बहुत जल्दी। अभी प्रभु जी के इतनी प्रेम से उन्होंने व्यवस्था की है, इसके लिए आपको सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है, कानों के लिए, आँखों के लिए, त्वचा के लिए, मन के लिए, सब प्रसन्न आह्लाददायक वातावरण है। तो हम लोग बड़े दिल से पुकारेंगे, हाँ हम आपको दोबारा नहीं कहेंगे, एक ही बार विनती करेंगे, आप सब लोग हृदय से पुकारो, ऐसे पुकारो जैसे कि ये जीवन के आखिरी बार पुकारने का मौका हमको प्राप्त हो रहा है. दिस इज द लास्ट चांस टू कॉल. तो कैसे पुकारेंगे आप? असहाय होकर, हृदय से, तीव्रता से, अंदर से, अंदर के कोने से कैसे पुकारेंगे? वैसे आप पुकारेंगे. सब अब अंधेरा हो ही गया है, लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, है ना? तो आप कौन है इसकी याद करने की जरूरत नहीं है. कहाँ से आए हैं, सुंदर है कि नहीं है, जवान है कि बूढ़े हैं, या बालक हैं, या पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है, या गरीब है कि अमीर है, या कौन कौन हम अपने आप को सोचते हैं, वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. सब कुछ भूल कर पुकारो. क्या राय याद रखना है पुकारते समय? कि मैं और राधा रानी और कृष्ण, बाकी सब झूठ है. सत्य केवल एक ही है, मैं हूँ, मैं उनका अंश हूँ, हम सब उनके अंश हैं, और राधा रानी और कृष्ण हमारे माता पिता हैं. त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सब कुछ हमारे आप ही हो. उद्धव जी ने भी कहा है, महाराष्ट्र के संतों ने भी कहा है, भागवत ने भी कहा है, लिखा गया है कि हमारे इष्ट और सखा केवल राधा और कृष्ण है. बाकी सब कुछ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सब टेम्पररी है, समय के साथ समाप्त होने वाला है. ये सत्य जो है कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं, ये जन्म जन्मांतर तक, शाश्वत काल तक, चिरंतन काल तक, इटर्निटी तक चलने वाला है, और यही सत्य है. इस पर जिसका विश्वास है वही बच सकता है. बाकी दुनिया में जो जो रिश्ते मिलते हैं, जो जो चीज़ें हम अनुभव करते हैं, उस पर जो श्रद्धा रखते हैं, उनको तो केवल ठोकरे ही खाना है ज़िंदगी में. तो अगर ठोकरों से बचना है तो अपना कर्तव्य करते रहो, किसी को त्याग करने की जरूरत नहीं, पति पत्नी बच्चों को, लेकिन हृदय से उनको अपना बना लो और उनके संबंध में उनको देखो कि मेरे पति भगवान के अंश हैं, मेरी पत्नी भगवान के अंश हैं, मेरे बालक भगवान के अंश हैं, मेरे मित्र भगवान के अंश हैं, गुरु भाई भगवान के अंश हैं. उस दृष्टि से उस संबंधों को देखो तो वो संबंध भी शाश्वत हो जाएंगे. ऑल द रिलेशनशिप्स विल बिकम परमानेंट एंड इटर्नल व्हेन दे आर सीन इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. तो उस भावना से सबको देखिए, किसी को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है. उनको देखने की दृष्टि बदल दीजिए, चेतना को बदल दीजिए. चेंज योर कॉन्शियसनेस, चेंज योर अप्रोच टूवर्ड्स द रिलेशनशिप्स एंड द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड इन कनेक्शन टू कृष्णा. तो अभी आप जब पुकारेंगे तो केवल आप हो और कृष्ण हैं, इसी भावना से आपको पुकारना है. हरे कृष्णा.